अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 अध्याय 3 श्लोक संख्या 21
देखा देखी जिसको कहते हैं, ये हमारा प्रवृत्ति है।
देखा देखी करते हैं, भगवान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कहते, देखा देखी करो। ये हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, लेकिन किसकी? श्रेष्ठ जन यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवे तरोजन सयत् प्रमाणं कुरुते। इस प्रकार से आप उन लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का यदि आचरण जैसा है वैसा अनुसरण करते हैं तो समाज में कल्याण होते। यह फैक्ट भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, सत्य भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान कहते हैं साधारणता जो लीडर करता है, जो लीडर होते हैं वो जो कुछ भी करते हैं उसका अनुसरण समाज करता है, लेकिन जो नेतागण होते हैं, प्रमुख होते हैं, लीडर होते हैं, उनका अनुसरण साधारणता समाज करता है। हमने देखा यह तत्व जीवन के सभी पहलू पर, हमारे जीवन के सारे पहलू पर यह तत्व लागू होता है। कौन सा तत्व? अनुसरण करने का, सारे पहलू। जैसे हमने सुना है बचपन से सुनते आ रहे, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, राजे चरित्रहीन होगा तो प्रजा से क्या चरित्र की अपेक्षा रख सकते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, फिर यथा शिक्षक तथा विद्यार्थी, रूपा जी ने तात्पर्य नहीं, जैसे शिक्षक हो गए उसी प्रकार से विद्यार्थी होंगे। यथा माता पिता तथा संतान, जैसे माता पिता होंगे वैसे संतान होंगे, जैसे शिक्षक होंगे वैसे विद्यार्थी होंगे, जैसे राजा होगा उसका गुण प्रजा में रहेगा। यह बात तो हम मानते हैं क्योंकि समाज को अनुसरण करने का आदत, अनुसरण करने की आदत, ये साइकोलॉजी। तो ये जो नियम है फॉलो करने का या अनुसरण करने का, यह निगेटिव में भी अप्लाई होता है। ये बात बहुत गौर से समझने वाली है। पॉजिटिव में तो अप्लाई होता है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवे तरोजन, श्रेष्ठ का जैसा आचरण होता है उस तरह सब लोग अनुसरण करते हैं, श्रेष्ठ आचरण का श्रेष्ठ अनुसरण। परंतु यदि निगेटिव हो गया तो ये निगेटिव में भी सत्य होता है। ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव श्रेष्ठ जनों का ही अनुसरण होता है और जो श्रेष्ठ नहीं है हीन है, श्रेष्ठ नहीं है चरित्रहीन है, भक्तिहीन है, प्रेमहीन है, दयाहीन है, कैरेक्टरलेस है, ऐसे लोगों का भी अनुसरण होता है। भगवान यहां पे इसीलिए तो कह रहे हैं कि अनुसरण श्रेष्ठ का ही करना है, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि जो हीन लोग हैं, अर्थात भक्तिहीन, प्रेमहीन, दयाहीन, चरित्रहीन जो लोग हैं, इनका अनुसरण न करें। इसलिए इसके पहले के श्लोक में भगवान ने उदाहरण के तौर पे किसका उदाहरण दिया था? महाराज जनक का, श्रेष्ठ जनक, उनका पहले उदाहरण का नाम लिया और फिर यह श्लोक है यद यद आचरति श्रेष्ठ, इनके जैसे श्रेष्ठ जो आचरण करते हैं उसका अनुसरण हमको करना चाहिए। पहले के श्लोक में जनक महाराज का उदाहरण दिया तो इस श्लोक में भगवान श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए कह रहे हैं। परंतु यह बात बहुत ध्यान में रखने लायक है, रखने योग्य है कि यदि कोई श्रेष्ठ नहीं है, करप्ट है, यदि राजा करप्ट है, राजा यदि भ्रष्ट है तो प्रजा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी, प्रजा ही भ्रष्ट है तो प्रजा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी, और यदि शिक्षक ही अस्ताव्यस्त है, शिक्षक ही इनडिसिप्लिन है, वेयर द टीचर इज इनडिसिप्लिन, शिक्षक ही यदि किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करता, विद्यार्थी क्या होगा? शिक्षक को 9 बजे उठते, विद्यार्थी उठते 5 बजे, पॉसिबल हो सकता है? शिक्षक ही कोई नियम कानून नहीं पालन करते हैं और विद्यार्थियों को क्या कह सकते हैं? तो वो जो इनडिसिप्लिन नेशन, अर्थात कोई नियम कानून नहीं है, कोई नियमितता नहीं है जीवन में, तो सारे विद्यार्थी कैसे हो जाएंगे? अनियमित हो जाएंगे। यदि शिक्षक अनियमित है, इनडिसिप्लिन है, तो विद्यार्थी चाहे शिक्षक कितना भी बुद्धिमान हो जाए, शिक्षक पीएचडी हो गए, कभी कभी शिक्षक बहुत पढ़े लिखे हो गए, एमए पीएचडी हो गए, परंतु नियमितता नहीं, 3 घंटे हो गए स्कूल के बाहर जाके स्मोक कर लिया, सुबह 10 बजे उठ गए, सभी प्रकार की सिनेमा पिक्चर शुरू की, सभी प्रकार की विद्यार्थी क्या पढ़ाई में बहुत होशियार है, पीएचडी चरित्र, तो विद्यार्थियों का चरित्र कैसे बनेगा? विद्यार्थी भी इनडिसिप्लिन हो जाए, शिक्षक इनडिसिप्लिन, विद्यार्थी। जब परिवार का प्रमुख यदि लेजी है, आलसी है, मस्तक ही आलसी है, प्रमुख परिवार का प्रमुख यदि लेजी है, आलसी है, तो परिवार के सारे सदस्य आलसी हो जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं। माता पिता स्वयं आलसी है, बच्चे को कहते भैया जल्दी उठ, 5 बजे उठ, और स्वयं 7 बजे उठते हैं, बच्चे से बहुत अच्छे आचरण की अपेक्षा करते हैं, स्वयं का आचरण हर 10 मिनट में चिल्लाते हैं, हर आधे घंटे में चिल्लाते हैं, और बच्चे को कहते हैं, बच्चे को कहते शांत स्वभाव के लोग, और स्वयं कितने अशांत है। तो यदि परिवार के प्रमुख व्यक्ति यदि लेजी है, आलसी है, तो सारे परिवार के सदस्यों में मूड आ जाता है, इसके प्रति अलर्ट रहना पड़ेगा। यदि हम अपने परिवार के सदस्यों को अच्छा देखना चाहते हैं, तो हमको आचरण का प्रदर्शन करना होगा, केवल बोलने से कार्य नहीं चलेगा, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने को तो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, जानने को तो हम सब जान लेते हैं, परंतु आचरण में गड़बड़ हो जाती है, तो आचरण में गड़बड़ होने के कारण समाज का विध्वंस हो सकता है। क्यों? आचरण में आचरण में सारे प्रकार के अनर्थ होने के कारण हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते, समाज को बिगाड़ सकते। पहले हम समाज को बिगाड़ते हैं, फिर उसको ठीक करने का प्रयास, बिगाड़ना चालू है, समाज को ठीक करने का प्रयास करते हैं, बिगाड़ते कौन है समाज को? बिगाड़ते कौन? हमने बिगाड़ा है, हमने नियमितता से जीवन नहीं जिया है, हमारा ये कॉपी सब लोग करते हैं, हमारा परिवार करता है, समाज करता है, सारी जनता हमारी कॉपी करती है, अर्थात हमने समाज को बिगाड़ा है, और हम सुधारने का प्रयास, हम सोचते हैं समाज सुधारना चाहिए, क्या कहते हैं? समाज सुधारना चाहिए, क्या हमने अपने आप को सुधारा है? प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं को सुधारे तो क्या समाज बिगड़ सकता है? नहीं बिगड़ सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सुधारे तो क्या परिवार का कोई एक भी सदस्य बिगड़ सकता है? नहीं बिगड़ सकता। परंतु हम स्वयं के आचरण में जो भी अनर्थ है उसको नहीं देखते हैं, आचरण की ओर हमारा ध्यान नहीं होता है, फेरी की ओर पूरा ध्यान होता है। बड़े बड़े श्लोक हम कोट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें विद्वानों ने की हुई बातें हम अपने बच्चों को अपने परिवार में सबको बताते हैं, लेकिन दिखाते क्या है? क्या दिखाते? आचरण में दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में बहुत ही विशेष बात बता रहे हैं। यद्यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ गण, श्रेष्ठ जन जो आचरण में करते लाते हैं उनका जैसा आचरण होता है बाकी सारा समाज उनका अनुसरण करता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी श्लोक को कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसी श्लोक को कोट करते हैं आदि लीला में 3.25, आदि लीला तीसरा अध्याय 25, 3.25 केवल कृष्ण ही प्रेम कर सकते हैं, केवल कृष्ण ही कृपा कर सकते हैं। कृपा यदि कोई कर सकता है, कृपा करने की इच्छा शक्ति या शक्ति किसी में है तो वो केवल किसमें है? कृष्ण। अब वो कृपा यदि देना है तो कृपा देने के लिए, कृपा प्रदान करने के लिए उनको स्वयं को आना पड़ेगा। वो कृपा प्रदान करने के लिए उस कृष्ण को स्वयं आना होगा और इसलिए वो स्वयं आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु बन के आए कलयुग में, नवद्वीप महा, और कृष्ण भक्ति उन्होंने की, उन्होंने दिखाया भक्ति कैसे करना चाहिए। जब वो कृपा करते हैं कब? जब हम भक्ति करते हैं। भक्ति करेंगे तो भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको भगवान की भक्ति करनी होगी। भगवान की भक्ति कैसे करेंगे कौन बता सकता है? भगवान ही बता सकते हैं। एकदम अच्छी तरह से कौन बता सकता है भगवान की भक्ति कैसे करें? ऐसा अच्छे से अच्छा दिवेश केवल अच्छे तरीके से कौन बता सकता है? भगवान स्वयं बता सकते। और इसलिए भगवान स्वयं आए श्री चैतन्य के रूप में, महाप्रभु के रूप में, गौरांग के रूप में। और रूप में भगवान श्री कृष्ण गौरांग के रूप में आए और आके उन्होंने भागवत कथा शुरू कर दी है। कथा की या कोई बहुत बड़े बड़े प्रवचन की क्या किया? यद्यता चलति श्रेष्ठ, उनको स्मरण हुआ, मैंने अर्जुन को बोला था, मैंने अर्जुन को क्या बोला था? यद्यता चलति श्रेष्ठ तत्पर। तो अब मुझे आचरण से दिखाना होगा कि कैसे भक्ति की जाती है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने यह श्लोक वहां पे 3.25 आदि लीला में वहां पे विशेष रूप में उसका उल्लेख किया कि भगवान श्री कृष्ण भी इस श्लोक का आचरण करते, इस श्लोक के अनुसार कार्यकलाप को लीला करते। महाप्रभु चैतन्य के रूप में आपकी उन्होंने उसी प्रकार से आचरण किया है कि नहीं? सबको स्मरण में है चैतन्य महाप्रभु की लीला, कितनी भक्ति। ऐसे बादल देखते हैं, अभी हम लोग बादल देख रहे हैं, पूरे घने बादल है भरे हुए। इस प्रकार के बादलों को देखते तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का स्मरण होता और कृष्ण का स्मरण होते उनके विरह भाव का भी उनको अनुभव होता और विरह भाव के अनुभव के कारण वो विरह की स्थिति इतने परम परमोच्च स्तर पर चली जाती थी वो अनुभूति वो अनुभव परमोच्च स्तर स्तर पे जाता और चैतन्य महाप्रभु बादल की ओर दौड़ पड़े, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ये भक्ति भगवान श्री कृष्ण का विरह विरह था। तो यह आचरण भगवान स्वयं ने दिखाया किस प्रकार से भक्ति की जा सकती। तो यदि हम भक्त बनना चाहते हैं हमको महापुरुष चैतन्य के उपदेशों का पालन करना, अनुसरण करना होगा। सो यद्यदाचित श्रेष्ठ तत्त देवो तरोजना, ये श्लोक हमारे मन में ऐसे गूंजते रहना चाहिए दिन रात, गूंजते रहना चाहिए। मुझे श्रेष्ठों का अनुसरण करना, श्रेष्ठों का अनुसरण करना, श्रेष्ठों का अनुसरण करना, श्रेष्ठों का नित्य गूंजना चाहिए अंदर से, गूंज। तो श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं सामान्य लोग भी वैसा वैसा आचरण उनका अनुसरण करते हैं। अब प्रश्न ये है श्रेष्ठ पुरुष कौन है?
जो शास्त्रों के नियमों के पालन के अनुसार चले,
जो शास्त्र के नियम अनुसार जीवन यापन करते हैं और श्रील प्रभुपाद। So, श्रेष्ठ पुरुष वह है जो जड़ और चेतन को तत्वतः जानकर भगवान कृष्ण की भक्ति करते, अर्थात कृष्ण कॉन्शियस होते। जो लोग जड़ और चेतन को तत्वतः जानकर भगवान श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं। अब यहां पे कोई प्रश्न ये पूछ सकता है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं एक बार उनको जड़ और चेतन को जानने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता? परंतु हम भगवान को जानते वक्त, भगवान को जानने की जो, भगवान को समर्पित होने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के अंतर्गत कभी हमारी गड़बड़ हो सकती है। अभी भगवान को हमने जाना नहीं है, भगवान को अभी समर्पित हुए नहीं है, भगवान को समर्पित होने का भाव है, उस मार्ग पे चल रहे हैं, उस मार्ग पे चलते चलते कभी पैर में कांटा चुभ सकता है। जा रहे मार्ग पे चलते चलते और रास्ते में सुंदर बगीचा दिख गया है, इस बगीचे में सोचा दो मिनट विश्राम करूं, इसने दरवाजा खोल दिया, अंदर से भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, हमारा गंतव्य भगवान श्री कृष्ण है, चलते चलते निकल पड़े हैं, मार्ग है, उस मार्ग पे अनेकों बातें उपलब्ध है, वहां पे सुंदर नंदन कानन बहुत सुंदर बगीचा बाग मिल गया है। इच्छा हुई, थका हारा था, दो मिनट बैठने की और बगीचा में अंदर चला गया। बहुत सुंदर पुष्प है वहां, बहुत सुंदर फलों का उद्यान है, सुंदर फूल है, सुगंध है चारों ओर, एकदम स्वर्ग का वातावरण है। क्या होगा? अपने मार्ग पे जो चल रहे थे बड़ा कठिन था, कभी काटा चुभ रहा था, कभी क्या हो रहा था, प्यास लग रही थी, छाव नहीं थी, धूप थी, सोचा रास्ते में दो मिनट के लिए तो बगीचे में विश्राम करूं दो मिनट के लिए, और बगीचे की ओर आकर्षित हुआ और विश्राम करने के लिए दो मिनट के लिए गया। क्या हो गया? आसक्त हो गया बगीचे से, कितना सुंदर सुगंध है, कितने सुंदर सुंदर पुष्प है, कितने सुंदर वृक्ष है, कितने फल है, क्या करना है आगे जाके? सब व्यवस्था यही पे, सब सुंदरता यही पे। कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव है, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की प्राप्ति के लिए उस भक्ति मार्ग पे, मार्ग है, पथ पथ है, मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन अवरोध आ सकता है, धोखा हो सकता है। इसलिए कहा गया है जड़ और चेतन को जो तत्व से जानते हैं, जड़ अर्थात संसार, चेतन अर्थात आत्मा, मैं कौन सो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, जो ये जानता है। और जो यह भी जानता है, जड़ को भी तत्वता जानता है, जड़ को तत्वता जानता है, अर्थात क्या बात जानता है, हाँ मैंने कहा था महामंत्र के बाद ये दूसरा तीसरा मंत्र है, कौन सा, मैंने बोला था ये रोज हमेशा अपने आप को ऐसा खींच के बोला कीजिए, चिमकी लेके बोला कीजिए, क्या तो है तो मूल है तो पहला ही महामंत्र क्या है, पहला मंत्र क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा, दूसरा मंत्र क्या है, ये प्रकृति चंचल है, ये प्रकृति चंचल है, ये प्रकृति, इस बात पे हमारा विश्वास नहीं रहता है, आप मानो या न मानो पर इसके ऊपर विश्वास नहीं होता, होता ही नहीं, इसलिए बोलता है, इसलिए बोलते हैं ये दूसरा महत्व का मंत्र है, पहला तो महामंत्र है, दूसरा महामंत्र कौन सा है, मैं आत्मा हूँ शरीर में, तीसरा महामंत्र कौन सा है, ये प्रकृति चंचल है, चौथा महामंत्र कौन सा है, कंट्रोल,
कंट्रोल
कंट्रोल कंट्रोल, ये सारे महा मतलब महामंत्र के बाद के उपमंत्र है, महामंत्र पहला है बाकी सारे मंत्र है महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, और उसको उसके बाद पहला मंत्र कौन सा है, मैं शरीर में हूँ मैं आत्मा हूँ, दूसरा मंत्र कौन सा है, प्रकृति चंचल है, प्रकृति चंचल है, प्रकृति चंचल है, तीसरा मंत्र कौन सा है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ये सारे शब्द गूंजने चाहिए, गूंजते रहने चाहिए मस्तिष्क में, वो मन मन में एक बार ये फीड कर देंगे ना तो वो बजते रहेगा, मन में फीड कर दीजिए अच्छे से, ये बजते रहेगा और ऐसे समय बजेगा जब जरूरत पड़ेगी, जब हमारा अज्ञानता से या न जानते हुए कभी कभी हमारा विश्वास हो जाता कि नहीं प्रकृति चंचल नहीं है, सब कुछ तो प्रकृति है, जब ऐसा भाव उत्पन्न होता है तब तुरंत मन में मंत्र बजेगा, ओम करते ओम ओम ऐसे गायत्री मंत्र बजता है, वैसे प्रकृति चंचल है प्रकृति चंचल है तो ये सब मंत्र को अपने डोर बेल में भी लगा सकते हैं आप प्रकृति चंचल है
कंट्रोल करो
नियंत्रण करो, प्रकृति चंचल होता है, विश्वसनीय नहीं, बदलते रहते नित्य बदलते बदलते चंचल। सो जो व्यक्ति इन बातों को जानता है तत्व से, और कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण भावना भावित ये तत्वता इन बातों को, जड़ और चेतन को तत्वता जानकर भगवान में भगवान श्री कृष्ण में समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी भक्त है वो श्रेष्ठ है। जो बात जड़ और चेतन को तत्व से जानता है, जड़ अर्थात संसार, चेतन अर्थात चेतन तत्व अर्थात आत्मा आध्यात्मिक तत्व, इनको तत्व से जानता है, मूल मूल से जानता है, ये जानकर तो कृष्ण को समर्पित, केवल जानता है बस हो गया ऐसा नहीं, जानकर कृष्ण को समर्पित होना आवश्यक है, जो कृष्ण को समर्पित है यह जानकर वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो वो जो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो जड़ और चेतन को तत्वतः जानकर भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन रहता है, भगवान श्री कृष्ण को वो समर्पित रहता है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी होता है, उसको यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर मन बुद्धि धन जमीन ऐश्वर्य सब मेरा नहीं है, ये मुझे संसार से प्राप्त हुआ है, ये संसार का ही है और संसार को परमात्मा बना, मुझे कहां से प्राप्त हुआ? जन्म से ही मैं लेके नहीं आया, यहां पे आया और उसके बाद यही से मुझे प्राप्त हुआ, ये सारा संसार का है, सारा संसार का है, और जो यहां अटल प्राप्त हुआ है ये मेरा नहीं है, ये संसार जिसने बनाया है उसका ही है। लेकिन सारी मिट्टी देखो, हम मिट्टी लेके आए थे यही की है, संसार की है, उसको भगवान ने बनाया है, संसार की मिट्टी। जो कुछ भी ऐश्वर्य इस मिट्टी से प्राप्त होता है, इस पृथ्वी से मिलता है, वो सब इस पृथ्वी का, इस संसार का, इस संसार को बनाने वाले का मेरा नहीं। इस बात पे वो अटल रहते हैं, ये उनको अच्छी तरह से पता रहता है। और इतना ही नहीं, वो श्रेष्ठ पुरुष त्याग, ज्ञान, वैराग्य, इन सारे सद्गुणों को भी अपना नहीं मानते। बताइए कितनी विशेषता। वो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, वो वैराग्य, ज्ञान वगैरह इतर सद्गुण इनको भी अपना नहीं मानते। क्यों अपना नहीं मानते हैं? क्योंकि वो समझते हैं इनको यदि मैं अपना मान तो क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व को पुष्टि मिलेगी उसे, आप मुझे ज्ञानी कहने लग जाएंगे। और जब आप मुझे ज्ञानी कहने लग जाएंगे तो मैं और मैं कहूंगा चार इंच और ऊंचा चाहिए आसन, ये छोटा पड़ रहा है, दस फीट और ऊंचा चाहिए। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो इन गुणों को भी अपना नहीं मानते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए यह चीजें भी, कौन सी, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, इतर सद्गुण, यश, यह सब कुछ कृष्ण भक्ति के लिए बाधक है कि नहीं बताइए। अपने में यदि सद्गुण भी है, सद्गुण भी कृष्ण को प्राप्त करने में बाधक होते हैं, ऐसा वो मानते हैं श्रेष्ठ पुरुष। अब बताइए कैसा करेंगे, क्या करेंगे? सद्गुणों की प्राप्ति करेंगे तो भक्ति में बाधक है, दुर्गुणों की प्राप्ति करेंगे तो भक्ति में बाधक है, तो क्या करेंगे?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण 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 हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाणि, राम राघव राम राघव राम राम लक्ष्मण, कृष्ण पाहि माम, हे कृष्ण पाहि माम। बस कृष्ण केशव पाहि माम, मुझे कृपा कीजिए। सद्गुणों का प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो भक्ति में बाधा आएगी, शरणागत होने का प्रयास करेंगे भगवान कहते हैं। श्रेष्ठ का अनुसरण करो, इसका अर्थ क्या है? शरणागत। क्योंकि ज्ञान वैराग्य इत्यादि सद्गुण यदि हम प्राप्त करके प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और प्राप्त भी हो जाएंगे तो हमारे व्यक्तित्व को पुष्टि मिलेगी, हम अपने आप को ज्ञानी कहलाएंगे, वैराग्य। ये श्रेष्ठत्व के लक्षण, श्रेष्ठ पुरुष वाचा काया और काल इसका सदुपयोग करता है अपनी वाचा नित्य उसकी वाचा का सदुपयोग ही होता है दुरुपयोग कभी करता ही नहीं अपनी वाचा अपनी वाणी का अपने शब्दों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता श्रेष्ठ ऐसे कई लोग हैं मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे कि मैंने कभी देखा ही नहीं हमने कि इनका किसी के साथ झगड़ा हुआ कभी हमने देखा नहीं कि इस व्यक्ति ने किसी के विषय में कुछ बोला होगा कभी नहीं देखा है आश्चर्य लगता है हमको आश्चर्य लगता है हमको क्यों आश्चर्य लगता है
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
वाचा सदुपयोग करते हैं वाचा दुरुपयोग कदापि नहीं काया तत् शरीर इंद्रिय इसका भी दुरुपयोग नहीं करते काया का भी दुरुपयोग और समय सबसे महत्व की बात समय का दुरुपयोग समय का दुरुपयोग कौन करता है बुद्धि का लक्षण क्या है किसके प्रति तो समय के प्रति अलर्ट रहना है बुद्धि का लक्षण है यदि कोई व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है इसका अर्थ यह समय के प्रति वो का तो क्या है बुद्धि बेवकूफ है मूर्ख है तो श्रेष्ठ लोग क्या करते हैं समय का सदुपयोग करते हैं अर्थात यह बात कही जा सकती है श्रेष्ठ लोग बहुत बुद्धिमान होते ये लोग बहुत बुद्धिमान होते अब इनके कई गुण हैं संपूर्ण सजीव सृष्टि के लिए संपूर्ण सजीव सृष्टि के हित में उनकी प्रवृत्ति रहती है उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है वो सारे सजीव सृष्टि का हित सोचते हैं कि मेरा अच्छा हुआ तो पड़ोसी का बुरा ही होना चाहिए मेरा कितना भी अच्छा हुआ और पड़ोसी का थोड़ा भी अच्छा हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगता ऐसा क्यों मेरा इतना उसका इतना अच्छा क्यों तो ये ऐसी प्रवृत्ति बहुत धोखादायक है ये जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनका स्वाभाविक क्या स्वभाव स्वभाव होता है उनकी प्रवृत्ति होती है क्या वो संपूर्ण सृष्टि का संपूर्ण सृष्टि के हित में सोचते संपूर्ण सृष्टि का संपूर्ण समाज का संपूर्ण जीवों का कल्याण कैसे हो ऐसा सोचते हम क्या ऐसा सोच सकते हैं परंतु उस स्तर तक जाने का हमने प्रयास करना चाहिए प्रभुपाद जी ने यही करने के लिए कहा है उस स्तर तक जाने के लिए कहा है प्रभुपाद जी ने संपूर्ण समाज का संपूर्ण सृष्टि का हित सोचना चाहिए सभी का हित क्या है सर्वसत्त सुखिना सर्वे संतो निरामय हा सर्वभद्राणि पश्यन्ति सारे सभी सब सुखमय हो सारे संसार में सारे संसार का कल्याण ये श्रेष्ठ गण जो है इस प्रकार से सोच कितना दिव्य विचार है सोच थोड़ी देर के लिए भी अपने मन में भी ये विचार आ जाए ना कि सारे संसार का कल्याण हो कितना अच्छा लगता है क्या फीलिंग होता है थोड़ा रियलाइज करके देखिए और इमीडिएट दूसरे सेकंड में बस क्यों अभी क्या फीलिंग हो रहा है स्ट्रेस आ गया इमीडिएट स्ट्रेस आता है इमीडिएट प्रेशर और ये सारे संसार का कल्याण है सरकार वो लोग धाम वृंदावन ऐसे लगता है। सो श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं उनको कभी इसलिए स्ट्रेस नहीं आता, कभी दे डोंट नो व्हाट इज ब्लड प्रेशर, व्हाट इज शुगर, क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, सभी के कल्याण का सोचते। देखो प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि सोचने से क्या फायदा, लेकिन सोचने से शुरुआत होती है। आप कोई भी कर्म करते हो, कर्म पहले आपके मन में हो जाता है और फिर शरीर में उतरता है, उसके बाद उसके पश्चात शरीर में उतरता है। कोई भी कर्म पहले मन सब कर लेते हैं, मान लो मन में अभी विचार हो रहा है कि घर पे जाके कल पल्ले पंच पकवान पूरन की पूरी पूरन पूरी बनाएंगे, किसी के मन में उत्पन्न आ गया, मन में उत्पन्न विचार हो गया क्या, बारिश का समय है पकौड़े बनाएंगे, माता जी के मन में ऐसे विचार आ गया वो तो कल बनाएंगे, लेकिन मन ने अभी बना लिया, मन पहले बना के कंप्लीट कर देता है, बाद में वो शरीर में उतरता है। और मन यदि ऐसा नहीं करेगा तो शरीर में उतरेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल, शरीर में नहीं उतरेगा। इसलिए मन में तो विचार करो कि सारे संसार का कल्याण होना चाहिए, पहले विचार तो करो, विचारों में तो गलती गड़बड़ है। तो यहां इसलिए वो क्या सोचते, संपूर्ण संसार का कल्याण हो, और नित्य सोचते उनका भाव संसार से लेने का नहीं होता है बल्कि संसार को देने का होता है। गोपाल जी का क्या भाव, और देने की भाव से संसार में समाज में एकता उत्पन्न होती है। प्रभुपाल जी ने क्या, केवल भक्ति दी, दी केवल देने का काम, प्रभुपाल जी ने केवल देने का कार्य किया, तो देने के भाव से तो समाज में एकता का भाव निर्माण हो जाता है, प्रेम का भाव निर्माण हो जाता है। देने से प्रेम का भाव उत्पन्न होता है और लेने से क्या होता है, समाज में संघर्ष होता है। समाज में प्रेम को स्थापित करना चाहते हो, समाज में प्रेम होना चाहिए ना, दंगे भी होने चाहिए। समाज में यदि प्रेम स्थापित करना चाहते हैं तो समाज को देने का ट्रेनिंग देना चाहिए, देना सीखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति कुछ योगदान है, उसको देना चाहिए समाज को। जब वो देगा, समाज को जब देगा और सारे लोग समाज को देने लग जाएंगे तो समाज में एकता का और प्रेम का और लेने का भाव उत्पन्न हो जाएगा। हर कोई व्यक्ति दूसरे से लेने का सोचेगा, खींचने का सोचेगा, इस व्यक्ति को मैं कैसे यूज करूं, प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ही सोचेगा, कैसे यूज करूं, कैसे कैसे यूज एंड थ्रो, यूज करो थ्रो करो, इसके अलावा इसके आगे की दृष्टि नहीं है संसार में। तो जब इस प्रकार से लेने का लेने का लेने का ही भाव हो जाएगा तो संसार में संघर्ष होगा, ये बात निश्चित है, निश्चित है 100%। संसार में संघर्ष हो जाएगा और शरीर को ही मेरे लिए मानने से, मतलब मैं क्या मानता हूं, मेरे लिए क्या है, सारा संसार, मैं संसार से ले रहा हूं और इस शरीर भी संसार से आया, ये शरीर मेरे लिए, शरीर मेरा है, शरीर मेरा है, शरीर मेरा है। तो शरीर को मैं संसार से ले रहा हूं, शरीर को मैं अपना मान रहा हूं और शरीर को इतना ज्यादा शरीर के प्रति आसक्त हो गया हूं, इसके कारण संसार से लेने का भाव उत्पन्न हो गया और संसार से मैं मुझे लेने का भाव उत्पन्न होने के कारण संसार में संघर्ष। प्रत्येक व्यक्ति शरीर से आसक्त है, प्रचंड आसक्त है, और इस शरीर को तृप्त करने के लिए, शरीर को सुखी रखने के लिए इस संसार से लेने का भाव उत्पन्न हो, लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है, शरीर को चाहिए, शरीर को चाहिए, शरीर को चाहिए, शरीर को चाहिए, लेना है, लेना है, शरीर को चाहिए, लेना है, शरीर को चाहिए। और लेने का भाव प्रत्येक व्यक्ति का इतने स्तर पे पहुंच गया है कि अब संसार में संघर्ष ही संघर्ष, चाहे आप कुछ भी कीजिए। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, मानव मानव अधिकार के एक इंस्टीट्यूट ने 1 करोड़ इंस्टीट्यूट बनाए, कोई लाभ नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव क्या हुआ है, लेने का, लेने का संसार से, देने का कुछ नहीं, देने का। और लेने के भाव से समाज में संघर्ष होगा और संघर्ष ही होगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी व्यक्ति इसको दुरुस्त नहीं कर सकता, क्योंकि श्रेष्ठ लोग है नहीं और है तो काम सरल। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
शरीर से अनासक्त रहने के कारण ये जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं इनका लेने का भाव नहीं। अब देखिए फिर से सारे प्रसार की जड़ क्या है, मैं शरीर, परंतु जो श्रेष्ठ होते हैं इस शरीर के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होने के कारण संसार से लेने की प्रवृत्ति उनमें नहीं, और संसार से लेने का भाव नहीं रहने के कारण वो सभी से प्रेम करते, संघर्ष का भाव नहीं रहता है, प्रेम का भाव होता है, और इसलिए उनकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया उनकी शास्त्रोक्त रहती है। प्रत्येक क्रिया शास्त्रोक्त रहती है। देखिए व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया शास्त्रोक्त कब रह सकती है, उल्टा समझिए उसको, अर्थात व्यक्ति शास्त्र का अनुसरण या शास्त्र के उपदेशों का पालन कब कर सकता है, जब वो व्यक्ति शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त हो गया। ये बात प्रूव हो गई, कैसे प्रूव हो गई बताइए, बहुत तत्व की बात है, बहुत ध्यान से समझना चाहिए। भगवद गीता अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए, अपने जीवन में आचरण करने के लिए, एक एक शब्द को आचरण में लाना चाहिए। श्रेष्ठ लोग जो होते हैं उनको शरीर से बहुत ही ज्यादा आसक्ति नहीं होती, और ये आसक्ति नहीं होने के कारण उनके सारे कर्म जो होते हैं वो शास्त्रोक्त रहते हैं, अर्थात वो शास्त्र के उपदेश के अनुसार ही अपने कर्म कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, अपन इसको उल्टा समझे कि कोई व्यक्ति शास्त्र का पालन कब कर सकता है, जब उसकी शरीर के प्रति आसक्ति है।
अमरीश महाराज,
अमरीश बहुत उदाहरण है शास्त्र, यदि हम आचरण, यदि हम शास्त्रों का उपदेशों का पालन करना चाहते हैं कि नहीं, पहला प्रश्न, शास्त्रों के उपदेशों का पालन करना चाहते हैं, तो हम पालन तभी कर पाएंगे जब हम शरीरों के और शरीरों के चौसले जो होते हैं, इंद्रियों के चौसले उसको पूरा करने में लगे नहीं रहते हैं, आसक्त नहीं रहते हैं, तभी जाके हम शास्त्रों के उपदेशों को समझ पाएंगे। नहीं तो एक आध दिन ऐसा सादा सुधा खाना मसाल आ गया, थोड़ा चटनी चाहिए था, थोड़ा एक अचार चाहिए था, साथ में पापड़ वगैरह तो अच्छा लगता, एक खाली स्वीट डिश बाद में राष्ट्र एक पीस होता अच्छा, तो शास्त्र का उपदेश नहीं समझ पाए। शरीर के चौसले जितने पूरे करेंगे उतना शास्त्र से दूर जाएंगे, और श्रेष्ठ पुरुष क्या करते हैं, शरीर के चौसलों की चिंता नहीं करते हैं, इसलिए वो शास्त्र के उपदेशों को समझ सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं, और इसलिए उनकी प्रत्येक क्रिया शास्त्रोक्त रहने के कारण वो संसार का भला करते हैं, संसार का कल्याण कर सकते हैं। कैसा कल्याण कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन से, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के केवल स्पर्श से, दर्शन से, चिंतन से सारे रोगों का, सारे संसार का हित हो जाता है। शास्त्र ने तो कहा है, इतना ही नहीं, ये जो श्रेष्ठ पुरुष है इनके शरीर से बह के जो हवा आती है, श्रेष्ठ पुरुष के शरीर से बह के जो हवा आती है, वो हवा ने भी यदि हमारा स्पर्श कर लिया तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। इतना यहां तक।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
देखिए केवल दर्शन से, श्रेष्ठ पुरुष के केवल दर्शन से लोगों का हित हो सकता है। श्रेष्ठ पुरुषों के का चिंतन करने से, मान लो दर्शन नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो श्रेष्ठ पुरुषों का चिंतन करने से हित हो जाता है। अब इतना भी नहीं हो रहा है तो श्रेष्ठ पुरुषों को स्पर्श करके जो हवा आ रही है, वो हवा ने सौभाग्य से यदि हमको स्पर्श कर लिया तो भी हमारा हित हो जाता है। बताइए, जैसे फूल होता है, फूल जब तक पेड़ पे होता है, वृक्ष पे होता है, सुगंध देता है, बाद में पेड़ से गिर जाता है, पेड़ में भी गिर जाता है, जमीन में गिर जाता है, सूख जाता है, लेकिन फिर भी संपूर्ण उस क्षेत्र में वो सुगंध फैलता है और दुर्गंधि को दूर करता है उस पूरे क्षेत्र में। उसी प्रकार से एक श्रेष्ठ पुरुष कैसी भी स्थिति में हो, कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, यदि उनको स्पर्श करके हवा भी आती है तो हमारे जीवन में जो दुर्गंध है, हमारे जीवन में जो अशुद्धताएं हैं, हमारे जीवन में जो अनंत है उसको दूर कर सकते। केवल दर्शन से बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, उनका दर्शन इतना बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर कर सकता है, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत फर्क पड़ता है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य, आप सब जानते होंगे, वो प्रभुपाद जी के शिष्य जब प्रभुपाद महाराज जू मंदिर में नए नवनिर्माण कार्य कर रहे थे, मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय बहुत कुछ मैनेजमेंट का काम प्रभुपाद जी देखते थे, उनके सारे शिष्य विदेशी थे अमेरिकन, तो उनको मार्गदर्शन करते थे, प्रभुपाद जी आते थे। एक बार एक व्यक्ति उनको नाम सुना और उनको देखने के लिए, केवल देखने के लिए, वो सुना था इधर बहुत पागल आते हैं, चलो क्या है जरा देखो। आया, उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा, उन्होंने प्रभुपाद जी को देखने के पश्चात उनकी नजर प्रभुपाद जी के हाथ के घड़ी के ऊपर, प्रभुपाद जी के हाथ में बहुत सुंदर घड़ी थी, किसी भक्त ने किया हो, उनको वो घड़ी इतनी अच्छी लगी, भक्ति से इनका कोई संबंध नहीं था, मुस्लिम थे बाइबल, जन्म से मुस्लिम, लेकिन मंदिर में आए पहली बार देखा, पागलों को देखने के लिए आए, लेकिन प्रभुपाद जी का दर्शन हो गया और प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ, उनके हाथ में की घड़ी बहुत सुंदर लगी, तुरंत मन में विचार आया कि घड़ी को मैं चोरी कर लूं, अभी मैं क्या करता हूं, जरा स्ट्रेटजी बनाता हूं, जरा प्लान बनाता हूं, ये घड़ी मुझे दो चार दिन में तो क्या करना है, लंपास करना है, गायब करना है, तो प्लान, घड़ी चोरने के लिए दो तीन बार लगातार, दूसरी बार भी आए, प्रभुपाद जी को सुना आधा घंटा, प्रभुपाद जी की वो ध्यान रखा, कब कहां जाते हैं, घड़ी कब निकालते हैं, तीसरी बार है, अब सोच गया कि आज तो काम तमाम करना है, आज गरीब छोड़ना है, आज तो काम तमाम करना है। उस विचार से वहां पे आए, थोड़ी देर 15 मिनट गोपाल जी को सुना, और सुनने के पश्चात गरीब छोड़ने के बदले भक्त बन गए, हरे कृष्ण की माला ले ली, वही बैठ के 16 माला जप किए और गोपाल जी के महाराज में आपको समर्पित हो गया, मैं आपकी भेड़ी चुराने आया था, आपने मेरा पूरा हृदय चुरा लिया और पूरा जीवन उन्होंने अपना इस गोपाल जी के मिशन में समर्पित कर दिया। आज आप इस्कॉन टेलीविजन आई टीवी देखते हैं, सबको कौन कौन देखता है आई टीवी, इस्कॉन टेलीविजन वेरी फेमस चैनल आई टीवी, उस आई टीवी के वो डायरेक्टर गोपाल महाराज के बड़े वरिष्ठ शिष्य में से एक शिष्य है। अनेक वर्षों तक गोपाल जी के इस मिशन का प्रचार प्रसार किया, अभी जुहू मंदिर में सेवा करते हैं, बहुत वरिष्ठ भक्त है, बहुत ही सादे सीधे स्वभाव के हैं, और यह प्रभाव होता है श्रेष्ठ भक्त। श्री गोपाल की चोर भी की है, चोर भी है तो उसके भी ऊपर श्रेष्ठ भक्तों का प्रभाव, श्रेष्ठ जनों का प्रभाव हो जाए। हमारे ऊपर क्यों नहीं होता? जरा 10 साल पहले का विचार कीजिए, 10 साल पहले हम कैसे थे, 15 साल पहले हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं। अब प्रश्न ये है कि आगे का प्रभाव हम स्वयं होना नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारा प्रयास है, यदि हमको तत्परता होगी तो प्रयास बढ़ेगा, तत्परता नहीं होगी तो प्रयास नहीं बढ़ेगा, ढीले पड़ते हैं क्योंकि तत्परता नहीं है, तत्परता नहीं है तो प्रयास कम पड़ता है, प्रयास कम पड़ता है तो प्रभाव नहीं होता। श्रेष्ठ पुरुषों ने हमारे ऊपर जो प्रभाव करना था वो कर दिया, उसका फल आज हमें मिल भी रहा है। हम जैसे 15 वर्ष पहले थे वैसे अभी नहीं है, बदलाव आ गया, फर्क पड़ेगा, उनकी वाणी का प्रभाव होगा। तो होता क्या है श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क में आने से, श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क में आने से भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाता है। क्या होता है? श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क में आने से भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। क्यों होता है? श्रेष्ठ पुरुष के संपर्क में आने से, उनका अनुसरण करने से होता क्या है? अभी हमने कहा आसक्ति कम होती है, अहंकार कम हो जाता है, अहंकार मिट जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क में आने से अहंकार मिट जाता है, ये बहुत बड़ा लाभ है। इस संसार में अहंकार मिटाने वाली कोई टैबलेट नहीं, कोई इंसुलिन, कोई क्या कहते सलाइन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण क्यों करना है? क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं होता। उनके अंदर अहंकार क्यों नहीं होता है? क्योंकि सद्गुणों को भी वो बाधा समझते हैं। अभी हमने चर्चा की है, सद्गुण जो होते हैं ज्ञान वैराग्य त्याग, इसको भी वो बाधक समझते थे, उनके अंदर अहंकार आने का कोई स्कोप ही नहीं। जब उनके अंदर अहंकार नहीं होगा और हमारे अंदर मानव होगा और हम उनके संपर्क में आ जाएंगे, हमारा संपर्क बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर का अहंकार मिट जाएगा। भगवान के और हमारे बीच में क्या है? भगवान के और हमारे बीच में केवल अहंकार है। जब वो मिट जाएगा तो क्या दूरी क्या है? कोई दूरी नहीं। भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध हो, बहुत सुंदर रिलेशनशिप है। बहुत ही सुंदर संबंध है। बीच में केवल हानि का, उसको मिटाने वाला श्रेष्ठ पुरुष है, फिर उसके पास हम जाते हैं, उसका हमको अनुसरण करना है। ये यद्यत आचरति उसका अनुसरण करने से हमारे अंदर की अहमता मिट जाती है और अहमता मिटने के कारण भगवान के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं और इसलिए श्रेष्ठ पुरुष द्वारा भगवान से जो संसार संचालित होता है, भगवान की शक्तियों के द्वारा तो संसार संचालित होता है ना। संसार का संचालन कैसे करते हैं भगवान? अपने शक्तियों के माध्यम से ही करते हैं ना। तो ये जो श्रेष्ठ पुरुष होता है इसका भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाता है और घनिष्ठ संबंध होने से वो यह जानता है कि ये संसार को संचालित करने वाली तो भगवान की शक्तियां है ना, अर्थात ये संसार तो भगवान की शक्ति है ना और मेरा तो भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है ना। तो इसलिए इस संसार के प्रति वो क्या करता है, प्रेम। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है, यदि हम संसार से प्रेम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि भगवान से प्रेम होगा, वो बगीचे के माफी का वो संसार में बैठ जाएंगे, मन लग जाएगा उसमें। संसार में इतनी वैरायटी है, इतने सुगंध है, इतने सुंदर दृश्य है, भगवान का दिखेगा। अर्थात संसार से प्रेम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि भगवान से प्रेम होगा या भगवान से संबंध दूर, परंतु भगवान से संबंध दूर करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे तो अपने आप हम संसार से प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यह जान जाएंगे कि यह संसार को संचालित भगवान ही करते हैं, अर्थात यह संसार जो है भगवान की शक्ति, और तब हम संसार के प्रत्येक जीव से प्रेम करेंगे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
देखिए इस बात को बहुत महत्व का, ये बात बहुत महत्व का है, बहुत तत्व महत्व का है। श्रेष्ठ पुरुष का अनुसरण यह विषय चल रहा है, श्रेष्ठ पुरुष का अनुसरण। पहले हमने व्याख्या की श्रेष्ठ पुरुष को, वो तो पता हो गया, श्रेष्ठ पुरुष क्या करते हैं वो भी हो गया। अब विषय चल रहा है श्रेष्ठ पुरुष का अनुसरण क्यों करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, उससे भगवान के साथ संबंध दूर हो जाता है और भगवान के साथ संबंध दूर हो जाएगा तो संसार के साथ हम। अब यह है, ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है, श्रेष्ठ पुरुष का अनुसरण करने से लाभ होता है। क्यों लाभ होता है? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष का प्रभाव दो तरीके से होता है। एक तो श्रेष्ठ पुरुष को हम साक्षात देखते हैं स्थूल शरीर दर्शन कर, साक्षात देखते हैं, अनेकों महीनों से वर्षों से देखते आ रहे हैं, उनका संग प्राप्त हो रहा है, तो स्थूल शरीर से भी हमारे ऊपर परिणाम होता है, परंतु स्थूल शरीर से जो परिणाम होता है वो मर्यादित होता है। जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष मान लो सुबह 4 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे उठने का हमारे ऊपर प्रभाव हो जाए, लेकिन वो बाद में क्या करते हैं, कितना तल्लीन होते हैं, कैसा भोजन करते हैं, इसका परिणाम कदाचित नहीं होगा, परंतु उठने का, क्योंकि स्थूल शरीर से परिणाम होगा, स्थूल शरीर का परिणाम, स्थूल देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वैसा करते, तो ये मर्यादित परिणाम होता है। जैसे भक्तगण तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं, कोई श्रेष्ठ पुरुष है तो जप करता है, तो हम उनको देखते हैं, कार्य लगाते हैं, वैसे ही हम करने का प्रयास, तो वहीं तक वो मर्यादित रहेगा उनके जैसा, परंतु जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनके भावों का जो प्रभाव होता है, उनके भाव का, श्रेष्ठ पुरुष के भाव का जो सूक्ष्म प्रभाव होता है, दिखता नहीं है, वो इतना तेजस्वी, इतना परिणामकारक होता है, असीमित होता है। श्रेष्ठ पुरुष के भाव का प्रभाव असीमित होता है, असीमित। तो श्रेष्ठ पुरुष का जो भाव का प्रभाव होता है वो असीमित होता है, उसकी कोई मर्यादा नहीं। आपको मैंने एक बार कुंभ मेला में प्रभुपाद महाराज का उदाहरण दिया, इस कौन का कैंप लगा था कुंभ मेला में, और वहां पे एक नागा बाबा और बड़े क्रोधित हो गए, हाथ में त्रिशूल थी और पूरे रोड में त्रिशूल लेके ऐसे घूम रहे सुपर स्पीड से, किसी को त्रिशूल लग जाए, कोई मर जाए, उसके को कोई चिंता नहीं, सब लोग भयभीत हो गए। वो इस्कॉन के, हमारे इस्कॉन के टेंट में आ गए, सारे भक्तों के ऊपर त्रिशूल, सारे भक्त भयभीत हो गए। और प्रभुपाद जी महाराज अपने कक्ष में बैठ के जप कर, उतने में दो तीन भक्त भक्ति भक्ति देव देव प्रभुपाद महाराज, एक नागा बाबा बड़े क्रोधित हो गए हैं और वो क्या करेंगे कुछ भरोसा नहीं है, बड़े भयंकर तरीके से उनके हाथ में त्रिशूल है, बड़े क्रोधित है। प्रभुपाद कह, मैं अभी यहाँ स्थित हो गया हूँ, मेरे आसन की मैं जप कर रहा हूँ, आप उनको जैसे तैसे अंदर ले जाएंगे। भक्त गए, बड़ा अथक परिश्रम प्रयास किया, उनको कन्विंस किया अंदर जाने के लिए प्रभुपाद जी, वो फिर भी क्रोध में थे, त्रिशूल हाथ में थे, अंदर चले गए। ये चार पांच भक्त उनके पास में साथ, प्रभुपाद जी ने सब देखा, प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा आप जाओ सब बाहर, इनको अकेले छोड़ दो। सब भक्त बोले नहीं प्रभुपाद, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अकेले हैं, ये एकदम क्रोधित है और हाथ में त्रिशूल है, कभी मार दिया कुछ, हमने आपको अकेले छोड़ दिया। रूपात कह, मेरा आदेश है आप जाओ छोड़ो, और सारे निकल गए बाहर चले। अरे बाबा जी अकेले त्रिशूल लेके क्रोध में एकदम प्रचंड, मानो कभी भी मार सकते, पता नहीं। दो मिनट के बाद वो बाहर आए नागा बाबा, और त्रिशूल भी उनके हाथ में नहीं, केवल दो मिनट के बाद बाहर आए, जितने भी भक्त बैठ थे सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये श्रेष्ठ भक्त जो होते हैं उनके भाव का प्रभाव, दो मिनट में कितना प्रवचन दे सकते हैं, वही मैं कह रहा हूं, दो मिनट में किसी व्यक्ति को कितना उपदेश दे सकते हैं जिससे उसका मन शांत हो जाए, वो भी नागा बाबा का। परंतु प्रभुपाद जी ने ऐसा क्या किया जिससे वो शांत हो, प्रभुपाद जी का भाव, भाव। इसलिए हमारा भाव हमेशा नित्य शुद्ध होना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष का भाव जो होता है नित्य क्या होता है, एकदम शुद्ध, कोई अनर्थ अशुद्धि उनके भाव में नहीं, बहुत शुद्ध होता है, इसलिए उनके बोलने में सिद्धि होती है। एक तो वो सदुपयोग जानते हैं वाणी का, भाव शुद्ध होता है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब करते थे अपने कुटिया में बैठ, उनका भाव इतना शुद्ध था कि आज भी उनकी कुटिया की जो ईंटें हैं वो ईंटों को पत्थर को काट लगाओ तो उसमें महामंत्र सुने, निर्जीव वस्तु की। तो सोच सकते हैं जो सूक्ष्म प्रभाव है वो असीमित रहता है, शुद्ध अंतकरण शुद्ध आचरण। हमारा बल शुद्धता की ओर होना चाहिए, शुद्धता ही हमारा बल है। Purity is hopes. Utility is sensible. Books are sensible. Preaching is sense. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Prabhupada ji ne char principles. तो इस प्रकार से भाव से असीमित प्रभाव होता है। रूपाल जी का देखिए इतना ही नहीं कि भाई अच्छे लोगों पे प्रभाव होता है, भक्तों पे प्रभाव होता है, अरे दूसरे संप्रदाय के गोमांस खाने वाले लोगों पे भी प्रभाव होता है। रूपाल महाराज जब प्रथम बार जॉर्ज हैरिसन को मिले, जॉर्ज हैरिसन कौन था?
बॉब सिंगर
वर्ल्ड का प्रसिद्ध, पूरे संसार का प्रसिद्ध, लंदन का, इंग्लैंड का सबसे रिचेस्ट ऐश्वर्यशाली धनी धनी व्यक्ति था पॉप सिंगर। पॉप सिंगर क्या बहुत चरित्र वाले होंगे? पॉप सिंगर थे ब्रिटिश थे जन्म से, जॉर्ज हैरिसन चारों प्रकार के पाप अच्छी तरह से करते थे। जब वो प्रथम बार प्रभुपाद जी को मिले, प्रभुपाद जी ने मिलते ही उनको ये श्लोक बोला, पहली बार उस मीटिंग में पहला ये श्लोक बोला प्रभुपाद जी। पहला ही बार बोला, बोले क्या तुम कर रहे हो, तुम तो बड़े धनी हो, बड़े नामी हो, बड़े प्रसिद्ध हो, लोग तुम्हारा आचरण कर रहे हैं, पर तुम्हारे भी बदल हो जाएगा, वो लोग तुम्हारा आचरण करेंगे तो इससे तो संसार का कल्याण हो जाएगा। तुम तो क्या कर रहे हो, संसार में संघर्ष उत्पन्न कर रहे हो पॉप म्यूजिक का, कि गाओ पॉप म्यूजिक लेकिन अपने आप का शुद्धिकरण करो। यद्यपि पहला श्लोक उसके जीवन का पहला संस्कृत श्लोक उसने सुना होगा प्रभुपाद जी के द्वारा, यद्यपि यह सुनने के पश्चात जॉर्ज हैरिसन ने जो पॉप म्यूजिक का है उसके पॉप म्यूजिक का पहले एल्बम का नाम क्या था पता है? तो इस प्रकार से हम सोचेंगे कि ये तो परिणाम भक्तों पे होगा या अपने इंडियन लोगों पे होगा या हिंदुओं पे होगा या है? कदापि नहीं, श्रेष्ठ व्यक्ति के भाव का प्रभाव असीमित है। जॉर्ज हैरिसन को भक्त बना दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात उन्होंने करोड़ों अब्जों रुपए की जमीन इस कॉम को दान दे दी। आज वहां पे बहुत बड़ा मंदिर है लंदन में, भक्ति वेदांत मेमोरियल, बहुत बड़ा है पूरे विश्व में प्रसिद्ध, बताओ। और उनका अनुसरण कितने तो लोगों ने किया। उस बैंड में उस समय जितने म्यूजिशियन थे उसमें से ज्यादातर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
उसका श्रेष्ठ व्यक्ति का अपना कोई स्वार्थ नहीं होने के कारण उसके अपने स्वयं के लिए कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। हमने 17वें श्लोक में क्या देखा, 3.17 क्या देखा? तस्य कार्यम न विद्यते, स्मरण है कि नहीं? तस्य कार्यम, उसको करे कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके कोई कर्तव्य स्वयं के लिए बचता ही नहीं, वो सब कुछ तो भगवान के लिए करता है। स्वयं के लिए क्या कर्तव्य कर्म, तस्य कार्य उसको कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है और उसमें अभिमान भी नहीं रहता है। 2.17 में हमने देखा उसके लक्षण क्या होते, निर्ममो निरहंकारो, 2.71 जो हो गया। तो वह जो कुछ भी प्रमाणित करता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, जो कुछ भी वो करता है लोग उसको उसका अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। यह देखा गया है कि समाज में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हो वैसा ही आचरण समाज करता है। अंतकरण में धन और पद का लोभ होता है, हमारे अंतकरण में धन और पद का लोभ होता है और यह लोभ होने के कारण अधिक धन वाले या ऊंचे पद वाले व्यक्ति को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं। किसको श्रेष्ठ मानते हैं? धन वाले को, नहीं तो ऊंचे पद वाले। कोई बड़ा धनी व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, मान लो अंबानी यहाँ के भगवत गीता प्रवचन किया था, कितने लोग आए यहाँ में जिसको भगवत गीता से कुछ लेना देना नहीं, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि अंतकरण में धन और पद की पद का लोभ है। इसलिए जो धनी लोग है, जो पद वाले लोग है, उनके प्रति समाज के अंदर, समाज के लोगों के अंदर आदर, श्रेष्ठत्व का भाव, उनको श्रेष्ठ समझते हैं। बराबर है। जिनके अंतकरण में जड़ वस्तुओं का महत्व अधिक है, वो व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ कौन नहीं होते उनके विषय में बता रहे हैं। जिनके हृदय में जड़ वस्तुओं का बहुत महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन चेतन, अर्थात आत्मा से ज्यादा शरीर का महत्व जिनके अंतकरण में जो सोचते हैं, वो व्यक्ति कदापि श्रेष्ठ नहीं होते हैं और ना ही वो श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ सकते। जिस व्यक्ति के अंतकरण में जड़ वस्तुओं का अधिक महत्व है, वो व्यक्ति कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकते और ना ही वो श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ सकते कौन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जड़ जिसके पास है उसी को श्रेष्ठ माने, इसलिए वो व्यक्ति कभी श्रेष्ठ नहीं होते हैं। उनके हृदय में केवल धन का और पद का आदर होने के कारण धनी लोगों को वो श्रेष्ठ समझते हैं। जैसे उदाहरण, जो चोर होते हैं, वो चोर जो होते हैं, वो चोरों के सरदार को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मान लो कि संत पुरुष को कितना भी समझा और उनका सरदार भी समझो, किसकी मानेंगे? सरदार की मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो सरदार जो पद है, वो पद का उनको लोभ है, पद के प्रति लोभ है। जैसे धीरूभाई बैठ गए आगे प्रवचन करने के लिए, तो धीरूभाई धनी व्यक्ति, धन का हमारे अंतकरण में लोभ है, तो हम धीरूभाई की बात मानेंगे। करोड़ों की संख्या में लोग आके यहाँ पे प्रवचन सुनेंगे भगवत गीता, कोई साधारण व्यक्ति कहेगा उसके पास थोड़ी धन है, और हमारा लोभ तो धन के प्रति है। जिसका लोभ भगवान के प्रति है, वो व्यक्ति बराबर श्रेष्ठ व्यक्ति को समझेगा और श्रेष्ठ बन भी जाएगा चाहे। परंतु जिसके हृदय में लोभ है, वो कभी श्रेष्ठ नहीं बनेगा। और ऐसे जो धनी व्यक्ति है, वो क्या करते हैं? उनके आचरणों का समाज में प्रचार करते हैं। धनी व्यक्ति के आचरणों का ही तो समाज में प्रचार हो रहा है ना, किसका प्रचार हो रहा है? जो धनी व्यक्ति है उनके आचरणों का समाज में प्रचार हो रहा है। जैसे धनी व्यक्ति संसार में जिन जिन उपायों से धन एकत्रित करते हैं, वही उपायों का उपयोग करके हम धन एकत्रित करना चाहते हैं। मान लो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो लिखन का बिजनेस है, एक समय पे मैं देखता था वो फैशन शोज ऑर्गेनाइज करते, क्या कहते, फैशन शो ऑर्गेनाइज करते। एक समय ऐसा था कि पूरी की पूरी यंग जनरेशन उनके पीछे पागल थी, मतलब उनको अपना आइडिया, क्योंकि उनके उन्होंने धन एकत्रित किया, कौन से मार्ग से किया, दारू बेच, अल्कोहल बेच, बहुत उसको श्रेष्ठ समझा समाज में उन्हीं की जैसे। उसके पश्चात ही तो मैं देख रहा हूं गांव में कितना भी छोटा गांव होने दीजिए, वो गांव में पांच पांच विदेशी दारू के दुकान, गांव में 100 लोग नहीं रहे, मान लो 100-200 का संख्या, लेकिन 2-3 दारू के दुकान। क्या लोगों ने अनुसरण किया? किया कि नहीं किया? समाज ने उसका अनुसरण क्यों किया? क्योंकि वो बहुत धनी हो गया, और धनी हो गया कौन से मार्ग से हुआ? तो वही उपायों का समाज उपयोग करेगा और उसी को अनुसरण करेगा और उसी के कारण उस व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ेगा। बराबर है कि नहीं? ऐसे हो रहा है। तो यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, ये सारे बुराइयों का, ये सारे बुराइयों की इतनी बढ़ोतरी हो रही है, ये सारी बुराइयां इतनी बढ़ रही है बिना कोई पाठशाला के। इसलिए पाठशाला में सिखाई जाती है चोरी, ठगी, धोखाधड़ी, कोई पाठ कोई स्कूल पढ़ाती है? बिना पढ़ाए ये समाज में इतनी बुरी तरह से फैल चुकी है। इसका ये मुख्य कारण क्या? अनुसरण। किसका? धनी व्यक्ति का या उच्च पद वाले? जड़ता के प्रति लोभ होने के कारण ये सब हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, कितने भी आप एजुकेशन सेंटर बनाइए, इससे दूर होने का कोई हो सकता है उपाय है? अनुसरण ही गलत लोगों का करते हैं। श्रेष्ठ कौन है ये भी नहीं जानते। श्रेष्ठ बनने की बात तो बात की, कौन श्रेष्ठ है, किसको श्रेष्ठ कहते हैं ये भी पता नहीं। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इसलिए लखपति लोगों को तो, धनी लोगों को, लखपति लोगों को तो श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु जब वो मर जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उनके साथ क्या जाता है? एक पैसा नहीं मिलता। और जो लाख नाम जप करता है, जिसके पास लाखों रुपए, उसको धनी मान के उसका आचरण अनुसरण करते हैं, उसको श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु उसकी मृत्यु हो जाती तो एक रुपया भी साथ नहीं मिल जाता। और जो लाखों नाम जप करता है तो उसको श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। और वो जब जाता भी है तो उसका एक नाम भी इधर नहीं छूटता, सब साथ में जाते। एक एक बार मैंने हरे कृष्ण बोला और आपने हरे कृष्ण बोला, वो भी इधर नहीं छूटेगा आपके साथ। एक एक बार का भी इधर नहीं छूटेगा आपके साथ, हमारे साथ जाएगा। और जो लखपति है उसका एक पैसा भी उसके पास साथ नहीं जाएगा, सब इधर छूटेगा। लेकिन फिर भी हम श्रेष्ठ किसको मानते हैं? लखपति। कितना दुर्भाग्य, भगवान को यह श्लोक पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह श्लोक कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए सब हो रहा है, भगवान जाने। तो इसलिए ये भगवान कहते हैं, इसी प्रकार से हम जानना चाहिए। प्रचारक जो होते हैं, प्रचारक, अध्यापक, नेता, शासक, महंत, पुजारी, ये सब जो होते हैं, सभी ने अपने आचरणों में सावधानी रखने की बड़ी आवश्यकता। सभी लोग वैसे तो सभी लोग, पर विशेषकर जो प्रचारक होते हैं, जो अध्यापक, टीचर, शिक्षक होते हैं, महंत होते हैं, पुजारी होते हैं, और नेता लोग होते हैं, विशेषकर होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण के प्रति सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता। जैसे इसी प्रकार के परिवार के मुख्य व्यक्ति को भी अपने आचरण के प्रति सावधानी रखना पड़ता है। जैसे ट्रेन का ड्राइवर होता है, वो बहुत सावधानी से गाड़ी चलाता है, तो उस ट्रेन में बैठे हुए लोग आते हैं आराम से गद्दा डाल के, एसी ऑन करके, हाथ के ऊपर पट्टी बांध के सो सकते हैं ट्रेन, क्योंकि जो प्रमुख व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? जो सावधानी से मकान। इसी प्रकार से घर का प्रमुख व्यक्ति सावधानी से अपने आचरणों के प्रति दक्ष है, सावधान है, सावधानी से चला रहा है, तो परिवार के इतर लोगों को कोई चिंता नहीं, तो आराम से सो सकते हैं, अर्थात वो निश्चिंत जीवन निश्चिंत रह सकते। परंतु यदि ड्राइवर सो गए परिवार का क्या होगा, फिर समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, संसार का? ड्राइवर सो गया का अर्थ है आचरण में गड़बड़ी हो गई, लेजी हो गई, संसार का भी ध्वंस हो सकता है। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इसलिए कैसा आचरण करना चाहिए? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांतिके हरि भक्ति उत्पातैव कल्पते। स्मृति श्रुति पुराण और पंचरात्र विधि के अनुसार अपना जीवन यापन करना। इस विधि के व्यतिरिक्त कुछ भी यदि करते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना, इसके बिना यदि स्मृति श्रुति पंचरात्रिक विधि अर्थात शास्त्र के बिना यदि आप ये सोचते कि मैं सब जान, अर्थात श्रेष्ठ भक्त के अनुसरण करने के बिना, भक्तों के संग में रहने के बिना, मंदिर में जाने के बिना यदि आप सोचते कि आप भक्ति कर सकते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है एकांत की हरे भक्ति उत्पादैव कल्पते। वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं, समाज में उत्पाद। तो करना क्या है? करना हमको ये है कि हमको श्रुति स्मृति पंचरात्रिक विधि, स्मृति श्रुति पुराण पंचरात्रिक अर्थात ये सभी का सार भगवद गीता है, ये सभी का सार भगवद गीता है। जो भगवद गीता के उपदेशों का पालन करके श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करते हुए भगवान का प्रेम प्राप्त करते 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 जीवन आगे बढ़ाना है, भगवान की ओर निकट जाना है, भगवान को अपना बनाना है, तभी हम बना सकते हैं। अन्यथा समाज में उत्पाद का कारण हम ही, और हम उत्पाद का कारण बनना चाहेंगे तो क्या करना है हमको? श्रेष्ठ जो होते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।